તારીખ 15/11/1993 શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 68.
શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, 7મા અધિકાર, જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિઓ કા પ્રકરણ હૈ. जो जैन कुल में जन्म लेते हैं, जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने का पुण्य है जिसको, फिर भी वो भगवान की बात को नहीं समझते हैं, भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हैं और अन्यथा या विपरीत मान्यता में रहे हैं, वे भी अन्य मति जैसे ही हैं. भले जैन कहलाते हैं, लेकिन वो कहलाने वाले जैन हैं, वास्तव में जैन नहीं है. क्योंकि दो ही मत है, मुख्यतया देखें तो दो ही मत है, एक जिन मत है और एक अन्य मत है. जो जिन मत नहीं है वो अन्य मत है, जिनेन्द्र का मत के अलावा दूसरा है, सभी अन्य मत है. प्रारंभ में पंडित तोरणमल जी साहब मांगलिक में एक दोहा लिखते हैं, इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव. इस भव भ्रमण रूपी वृक्ष है, तरु मने वृक्ष है, इसका एक ही मूल है जो मिथ्यात्व भाव है, मिथ्या दर्शन और अज्ञान है, वही एक मूल है जिसमें से भव भ्रमण होता रहता है. संसार में परिभ्रमण का मूल कारण यही एक है. ताको करे निर्मूल अब, उसको निर्मूल करने के लिए ये अधिकार लिखा है, ज्ञान और मिथ्यात्व को निर्मूल करने के, मूल को निर्मूल करना, और करिए मोक्ष उपाय, और मोक्ष का उपाय करने के लिए ये अधिकार चलेगा. अब जो जीव जैन है, जीन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व भाव रहता है, उनका वर्णन करते हैं. क्या कहते हैं कि जो जैन है, जैन इसलिए कि जैन कुल में जन्म हुआ है, इसलिए उनको लोग भी जैन कहते हैं कि ये लोग जैन हैं. किंतु जैन कोई संप्रदाय नहीं, जैन कोई ज्ञाति नहीं, जैन कोई समाज नहीं. जैन तो जो सम्यक प्रकार से विषय कषाय को और मिथ्यात्व को जीतते हैं, उसको जैन कहने में आते हैं. वहाँ वो मारवाड़ी भाई आए थे ना, उसने ऐसी परिभाषा किया था. वो तो महेश्वरी थे, जैन किसको कहना है कि जो अपने विकारों को जीते उसको जैन कहते हैं. हमको पसंद है वो बात, ऐसा बोले. मते, लेकिन वो खुद ऐसा मानते थे. यहाँ तो कुल धर्म वाले की बात लिया है कि जो कुल धर्म में आए हैं, जिन मंदिर में जाते हैं, जिन शास्त्र को पढ़ते हैं और जिन गुरु को मानते हैं, निर्ग्रंथ गुरु को मानते हैं, निर्ग्रंथ गुरुओं को मानते हैं, मैंने परिग्रह वाले गुरु को नहीं मानते हैं, वो बात आ जाती है। ऐसे जिनाज्ञा को मानते हैं, हम नमस्कार मंत्र को मानते हैं, हम 24 तीर्थंकर को मानते हैं ऐसे, और उनके भी मिथ्यात्व भाव रहता है, ऐसे कहलाने वाले जैनियों को भी मिथ्यात्व भाव रहता है, उसका वर्णन करते हैं किस कैसे प्रकार से रहते हैं। अन्य मति तो मिथ्या दृष्टि है ही, लेकिन जैन मत में आए हुए भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो कैसे कैसे प्रकार से मिथ्या दृष्टि होते हैं इसका वर्णन करते हैं। क्योंकि इस मिथ्या तो बैरी का अंश भी बुरा है, उसका तो पतला मिथ्या तो हो तो भी अच्छा नहीं है, मंद मिथ्या तो हुआ दर्शन मोह मंद हुआ तो अच्छा है, वो बात नहीं है, क्योंकि जहर का एक बूंद भी अच्छा माना नहीं जाता, एक बूंद तो अच्छा है, ज्यादा जहर अच्छा नहीं है, पूरी बोतल अच्छी नहीं है, लेकिन एक बूंद तो ठीक है, इसमें क्या है। क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाए, पतला मिथ्यात्व रह जाए तो भी वो त्यागने योग्य है। हमारा मिथ्यात्व तीव्र नहीं है, क्योंकि हम हमेशा विनागम को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसलिए हमारा मिथ्यात्व तो मंद है, ऐसा संतुष्ट होने लायक नहीं है। हाँ, तीव्र तीव्र वही ऐसा संतुष्ट हुआ, वही तीव्र मिथ्यात्व का भाव है। वर्तमान पर्याय में संतुष्ट होना यही मिथ्यात्व का द्योतक है, मिथ्यात्व को वो प्रसिद्ध करता है। इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, वहां जिनागम में मुख्य रूप से दो प्रकार से बात समझाई है, बात कहने का प्रकार, बात समझाने का प्रकार दो है, कथन पद्धति दो प्रकार की है। वहां मैंने जिनागम में, वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, वर्णन तो आगम में आता है सब, तो वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, निश्चय के भी थोड़े भंगभेद है, इसमें जो टोडरमल जी साहब कहना चाहते हैं यथार्थ कथन उसका नाम निश्चय और उपचरित कथन इसका नाम व्यवहार। उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है, उपचार का नाम व्यवहार बोला जाता है और यथार्थ का नाम निश्चय है। यहाँ वो बात नहीं है कि त्रिकाली स्वरूप को निश्चय कहे और एक समय के पर्याय को व्यवहार कहे, वो बात इधर नहीं है। यहाँ तो जो द्रव्य का जो गुण जो पर्याय है उसका नाम निश्चय है और दूसरे द्रव्य का दूसरा का बताना उसका नाम व्यवहार है, इसका नाम उपचार है, उतनी मर्यादा से बात चलती है। क्योंकि दूसरे दूसरे भंग भेद को दूसरी दूसरी जगह लगाया जाए तो समाधान होने वाला नहीं है। अभी बहुत शास्त्र पढ़ करके हमारे लोग ऐसे कहते हैं जी तो ऐसा कहते हैं, निश्चय में ऐसा कहते हैं, व्यवहार में ऐसा कहते हैं, लेकिन उसकी तो मर्यादा खुद में पहले बांधनी है कि ये कथन पद्धति का विषय चलता है, ये ज्ञान में का विषय नहीं चलता है। ज्ञान में निश्चय नहीं क्या है, व्यवहार में क्या है, वो दूसरी बात है। कथन में निश्चय नहीं क्या है, व्यवहार में क्या है, वो दूसरी बात कभी होती है, कभी एक सी होती है, कभी दूसरी भी होती है। जैसे पर का जानना व्यवहार है तो कथन में व्यवहार है, परिणमन में व्यवहार नहीं है। परिणमन तो निश्चित परिणमन है, इसका उसको पर प्रकाशक निश्चित परिणमन है, वो शक्ति का परिणमन है। उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए, क्योंकि ये आगम के कथन की बात चल रही है, इनके आगम के कथन के स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, यानी गलत फहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कहते हैं कुछ और समझने वाले समझते हैं कुछ और, ऐसा हो जाता है, वही कहते हैं। तो पहले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि लिया है, क्या पहले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि लिया है, फिर पीछे व्यवहाराभासी लेंगे, फिर उपयाभासी लेंगे, क्योंकि ये स्थूल मिथ्यात्व है, इससे थोड़ा सूक्ष्म व्यवहाराभासी, इससे और सूक्ष्म है वो प्रमाणाभासी है। स्थूल मिथ्यात्व है, उसमें परिणाम बिगड़ते हुए भी पता नहीं चलता है कि मेरे परिणाम क्या चल रहा है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि मैंने कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए, निश्चय स्वरूप नहीं लिया, वस्तु स्वरूप निश्चय में जो क्या है उसको नहीं जानते हुए, निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। क्या होता है कि निश्चय को तो नहीं जानते, निश्चय नहीं को नहीं जानते, निश्चय नहीं के विषय को नहीं जानते, निश्चय नहीं के कितने कितने प्रकार है उनको नहीं जानते, कथन में निश्चय नहीं क्या है उनको भी नहीं जानते, आभास हो गया सब। और निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर के मैंने कुछ उसमें आभास हुआ है और अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। फिर मान्यता में क्या है कि हम धर्मी हैं, हम मोक्ष मार्गी हैं। अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं, उसमें क्या करते हैं मूल में कि हम तो सिद्ध समान हैं, अनुभव करते हैं लेकिन मानते हैं, अनुभव अनुभव करते हैं ऐसा मानते हैं, अनुभव नहीं होता है उसको। क्या गलत धारणा से या गलत समझ से, आभास से अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। भाषा ऐसी है कि अगर कोई अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करे तो उसमें क्या तकलीफ है, उसमें क्या बुरा है, अपना आत्मा तो सिद्ध समान है, उसका अनुभव करे तो वो तो सही अनुभव है, सम्यक अनुभव है। ओके, नहीं, यहाँ तो उसको अनुभव तो नहीं होता है लेकिन मानते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव होता नहीं है और मान लेते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, ऐसी बात है। अगर अनुभव करे तो सम्यक अनुभव है, लेकिन भाषा ऐसी है, इसको क्या अर्थ करना है। अनुभव कर सकता हूँ या वास्तव में अवलंबन लेकर के अनुभव करे तो कोई आपत्ति नहीं है, वो तो परम सत्य है, वो तो निश्चय परिणमन, सही परिणमन, सम्यक परिणमन है। लेकिन अनुभव तो है अपने विकारी पर्याय का, शुभाशुभ भाव रूप पर्याय का अनुभव है अपने रूप में, और विकल्प करता है कि मैं सिद्ध समान हूँ, उस विकल्प का अनुभव करता है क्या? मैं सिद्ध समान परमेश्वर आत्मा हूँ ऐसा विकल्प का अनुभव करता है, मानता है कि मैं स्वरूप का अनुभव करता हूँ? कोई आभास है? आभास कहाँ से हुआ? कि दिनागम में पड़ा कि सबों की आत्मा कैसी है? मूल आत्मा तो मूल स्वरूप से सिद्ध समान है, सभी आत्मा सिद्ध समान है मूल स्वरूप से, निगोद का हो, मनुष्य का हो, नारकी का हो, कोई भी हो, सभी आत्मा मूल स्वरूप से तो सिद्ध समान है। तो बस मैं भी सिद्ध समान हूँ मान लिया और ऐसा विकल्प का अनुभव कर लिया और माना कि मैंने अपनी आत्मा का अनुभव किया, ये गलत अनुभव है। स्वरूप आपने आत्मा का सीध समान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी है क्या? अवस्था में वो अनुभव करता है कि मैं सीध समान हूँ, अवस्था में तो प्रत्यक्ष संसारी है, क्योंकि सिद्ध भगवान के तो राग द्वेष मोह होता नहीं, और उनको तो राग द्वेष मोह चालू है और मानता है कि मैं तो सिद्ध समान हूँ और मेरी आत्मा का मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव करता है राग द्वेष मोह का। आप प्रत्यक्ष संसारी है, ब्रह्म से अपने को सिद्ध समान मानते हैं, अवस्था में भी मैं सिद्ध समान हूँ ऐसा मानना ब्रह्म है, ऐसा मानना ब्रह्म है, वही मिथ्या दृष्टि है। ये जैनाभाषी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है क्या? कोई लोग अपन ऐसा ले लेते हैं, ये तो अग्रहित का प्रकरण चला है, ऐसा नहीं है, ये बुद्धिपूर्वक का विपर्यास है, इसलिए इसको भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहने में आता है। मिथ्याभाषी भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, व्यवहाराभाषी भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है और प्रमाणाभाषी भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि शास्त्र पढ़ करके गलती किया है, बुद्धिपूर्वक भ्रम हुआ है, नया भ्रम पैदा किया है, इसलिए वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि जो अनादि से चला आया है वो तो अग्रहित है ही, लेकिन यहाँ तो जिन शास्त्र पढ़ करके जो गलत मान्यता करता है बुद्धि से उसको ग्रहित मिथ्या हाँ ऐसा मानते थे कि कुदेव को गुरु उसको शास्त्र माने तो ग्रहित और जिनेन्द्र के माने तो अग्रहित, ऐसा नहीं, ये तो स्थूल ग्रहित है, बहुत स्थूल ग्रहित है। अच्छा, जिनेन्द्र परमात्मा अभी सजीवन मूर्ति इस काल में इस क्षेत्र में नहीं है, तो हम प्रतिमा जी को जिनेन्द्र मान करके पूजा भक्ति आदि करते हैं। अभी इसको मानते हैं इसका मतलब कि इसका निषेध नहीं करते हैं, है? कभी कभी करते हैं कि नहीं करते हैं, है? मानना कहाँ गया, मानना किधर गया, वो मानना मूल में था ही नहीं। या तो कुदेव को माने या तो सुदेव को नहीं माने, दोनों ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। सुदेव को नहीं माने, सुदेव को उठापे, विरोध करे क्या? जिनेन्द्र प्रतिमा की स्थापना का विरोध करे, निषेध करे, वो कुदेव को मानने वाले से भी अधिक खराब है, क्योंकि वो तो सीधा निषेध नहीं करता है, बोलता है कि वो हमारा देव नहीं है, वो हमारा देव है, हम उसको मानते हैं, उसको नहीं मानते, लेकिन वो तो मानते हैं, उनका विरोध करते हैं सीधा डायरेक्ट। तो मान करके विरोध करता है तो मानना कहाँ रहा, माने वो विरोध करे नहीं, विरोध करे वो माने नहीं, सीधी बात है। ये बात थोड़ी कठोर लगी, हमने ये बात प्रसिद्ध किया था, कठोर लगी। लगे तो लगे लेकिन सत्य है, बात तो सत्य है। पद्मावती को माने वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है ही, वो तो कुदेव को मानने वाले है ही, लेकिन जिन प्रतिमा का, अर्यंत प्रतिमा का निषेध करे वो इससे भी तीव्र मिथ्या दृष्टि है, इससे भी गया बीता है। पद्मावती को मानने वाले से भी वो गया बीता है, उससे भी हीन है वो। हाँ, वो तो अभिमान करता है कि मैं मानता हूँ, इसको नहीं मान, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, है? अभी सारी दुनिया के हयाती हो नहीं हो हमें क्या लेना देना, दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है, किसी की भी हयाती हो किसी की नहीं हो हमें किससे क्या लेना देना, कोई पद्मावती होवे या नहीं होवे हमें क्या, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो अपने घर में अपने अपन में। हमारा संबंध तो वितराग मार्ग से है, राग से हमारा संबंध नहीं है। हाँ हाँ सब कुछ, क्योंकि उतने पुण्य है भगवान के, लेकिन क्यों करते हैं। चलो हमको ये वादा नहीं है, सम्यक दृष्टि की आप पूजा करें उसका हम वादा नहीं करेंगे, लेकिन क्यों, ये हमारा सवाल है। हाँ बड़े बोल के मानते हैं लेकिन क्यों मानते हैं, सवाल ये है। पद्मावती एक ही सम्यक दृष्टि है क्या, दूसरे सम्यक दृष्टि नहीं है, तो दूसरे को क्यों नहीं मानते, एक को मानते दूसरे को नहीं मानते, इसका मतलब क्या, इसका क्या मतलब कि तुम्हारे पेट में कोई दूसरी बात है, भले ही नहीं बताओ लेकिन कुछ बात उसमें दूसरी है। वो सम्यक दृष्टि चमत्कार करने वाला है और हमको मदद करने वाला है, है? तो सम्यक दृष्टि होवे वो चमत्कार करे नहीं, चमत्कार करे वो सम्यक दृष्टि होवे नहीं, जिसको मदद करे दूसरों का नुकसान करे ऐसा कोई सम्यक दृष्टि होता नहीं है। ये सब गड़बड़ वाली बात है, दिखाने का कुछ और है, अंदर में कुछ और है, ऐसी बात है। लंचन से क्या मतलब है अपना, भगवान को प्रतिमा को ने, भगवान की प्रतिमा को लांछन होता है, होता है। देव देवी नहीं होवे, देव देवी नहीं होते, दूसरी चीज है, देव देवी होना दूसरी चीज है, होगा और क्या, ऐसा कोई बात नहीं।
तो वो क्या है कि उसको उसको शांतिनाथ भगवान बोले, उसको पार्थनाथ भगवान बोले, ऐसा हरण का चिन्ह शांतिनाथ भगवान, सर्व का चिन्ह है वो पार्थनाथ भगवान का है, पहचान के लिए होगा बात, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है इसका, कोई इसका कोई पारमार्थिक भेद नहीं है उसमें कोई, क्योंकि सबकी मुद्रा एक सी है, किसी में मुद्रा में कोई फर्क नहीं है। कोई शांतिनाथ भगवान की शांत मुद्रा रखो और दूसरे भगवान की अशांत रखो, क्या ऐसा कोई नहीं है, कोई भेद नहीं है। हाँ, एक जमाने में वो भी नहीं था, तो इसका कोई होना अवश्य अवश्य नहीं है, हुए तो माने, नहीं हुए तो नहीं माने, वो भी जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसे बहुत से पुराने प्रतिमा में लांछन नहीं थे, वो प्रशस्ति नहीं थी, प्रशस्ति आज जो लिखते हैं वो एक बाह्य रूढ़ी की परंपरा, कोई जमाने में चलती है कोई जमाने में नहीं चलती, उतनी बात है। शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान क्या है। शास्त्र में जहाँ निश्चय का प्रकरण चला है वहाँ आत्मा को, सभी आत्मा को, एक आत्मा को नहीं, सिद्ध दृष्टि का आत्मा को नहीं, सिद्ध भगवान की आत्मा को नहीं, अरिंद भगवान की आत्मा को नहीं, निबोध के आत्मा को भी, सभी संसारी जीवों के सभी आत्माओं को सिद्ध समान कहा है। किस किस दृष्टि से कहा है, मूल द्रव्य की दृष्टि से कहा है। हाँ, भव्य अभव्य दोनों आ गया, इसमें अभव्य बाकी रहते हैं, अभव्य आत्मा भी सिद्ध समान है, क्योंकि वो अभव्यता मूल द्रव्य में नहीं है, शुद्ध पारिणामिक में नहीं है। लो ठीक, शास्त्र पद्धति से कहें तो शुद्ध पारिणामिक में नहीं है, आगम पद्धति से ये कह सकते हैं शुद्ध पारिणामिक में अभव्यता नहीं है। अभव्यता तो कही कि वो अशुद्ध पारिणामिक की बात है, शुद्ध पारिणामिक की बात नहीं है। पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है, पर्याय अपेक्षा तो जो पर्याय जिस जीव जिस जीव की हो वही निश्चय पर्याय उस जीव की है, वो भी निश्चय है, वो निश्चय है, जिसके मनुष्य की योग्यता तो निश्चय है, राग हुआ तो वो निश्चय है, मोह हुआ तो वो निश्चय है, इसकी पर्याय है, इसलिए निश्चय है, भले अशुद्ध निश्चय है लेकिन है निश्चय। पर्याय अपेक्षा इससे समान नहीं है, दृष्टांत देते हैं, जैसे राजा और रंग मनुष्यपणे की अपेक्षा समान है, राजा और रंग मनुष्यपणे की अपेक्षा समान है, परंतु राजापणे और रंगपणे की अपेक्षा तो समान नहीं है। ऐसे आत्मा सभी आत्मा से समान है लेकिन पर्याय में तो जो जैसा है वैसा मानना चाहिए। अच्छा दृष्टांत दिया है, मनुष्य तो दो ही है लेकिन राजा है वो नहीं है, वो राजा नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपने की अपेक्षा समान है, जो जीवपणा है वो एक एक समान है, परंतु सिद्धपणे और संसारीपणे के पर्याय की अपेक्षा तो समानता नहीं है। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध है वैसा ही अपने को पर्याय में भी शुद्ध मानते हैं, है संसारी पर्याय में और मानते हैं सिद्ध हो, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है, अशुद्ध अशुद्ध अवस्था है वह पर्याय है, इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो यही मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि समानता है नहीं, समानता है नहीं, पर्याय में सिद्धपना हुआ नहीं फिर भी माने, ये मिथ्या मान्यता है, ऐसी तो परिस्थिति है ही नहीं, ये इस प्रकार है। तथा श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान वर्तता है, तो अपेक्षा को छोड़ दे, वर्तता है उसको ले ले, अपेक्षा तो बताई है वहां वर्तता का मतलब मौजूद है लेकिन कहां द्रव्य में पर्याय में नहीं वो लोग मानते हैं देखो लिखा है कि नहीं केवल ज्ञान वर्तता है था केवल ज्ञान था ऐसी बात है तथा तो अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं परंतु अपने को तो सूक्ष्म रूप मति स्वरूप ज्ञान का सद्भाव है ये प्रत्यक्ष है ये दो ज्ञान साथ में नहीं रहते जिसको मति स्वरूप ज्ञान हो उसके पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होता जिसके पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो उसको मति स्वरूप ज्ञान रहता नहीं है वो तो दो साथ में नहीं रहता कोई लड़का ऐसा थोड़ा बोलेगा कि मैं पहली क्लास में भी पढ़ता हूँ और कॉलेज में भी जाता हूँ ऐसा हो सकता है क्या
नहीं
जो पहली में है वो कॉलेज में नहीं कॉलेज में है वो पहली में नहीं है विद्यार्थी भले हो लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं है ये दृष्टांत भी लागू नहीं ये साधक है और ये सिद्ध है सिद्ध है वो साधक नहीं साधक है वो सिद्ध नहीं दृष्टांत तो आंशिक रूप से लागू होता है परंतु अपने को तो सूक्ष्म रूप मति श्रुत ज्ञान श्रुतादि ज्ञान का सद्भाव है क्षायिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण मन प्रयोग ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण पांचों ज्ञानावरण का क्षय होने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो कहते हैं क्षायिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही क्षायिक भाव मानते हैं तो ही मिथ्या दृष्टि है तो ये कर्म पद्धति से आगम पद्धति से सिद्ध करके समझाया और कहते हैं कि शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है क्या वो शक्ति अपेक्षा से कहा है पर्याय यानी व्यक्ति अपेक्षा से नहीं कहा है शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है वो शक्ति की अपेक्षा से कहा है क्योंकि वह सर्व जीवों में केवल ज्ञान आदि रूप होने की शक्ति है तो वहां जो लिखा है कि हमको मुख्य नहीं का हेतु से केवल ज्ञान वर्तता है वो तो केवल ज्ञान की शक्ति को व्यक्ति के रूप में भाते हैं उसमें क्या दलील करेंगे वर्तता है ऐसा क्यों लिखा वर्त भविष्य में वर्तेगा ऐसा क्यों नहीं लिखा तो क्या भाषा ज्ञान नहीं आता था लिखने वाले को भाषा ज्ञान का अज्ञान था क्या वर्तता है ऐसा क्यों लिखा कि उसमें भावना ली है अपने परमेश्वर को दूर मत देख क्या लिखते हैं दीपचंद जी अनुभव प्रकाश में अपने परमेश्वर को दूर मत देख और शक्ति को व्यक्ति के रूप में भावना भाने की हो तो शक्ति को व्यक्ति के रूप में भावना में लिया वो तो भावना भाना और बात है और भावना नहीं हुए और रटन करना दूसरी बात है देखो भावने भाना वाला ऐसा बोलेगा हमको वर्तता है तो उनको दिखने में आता है अपना केवल ज्ञान स्वभाव ज्ञान में प्रकट दिखने में आता है तो भावना में आता है और जिसको भाव भाषण तो है नहीं, दिखता तो है नहीं, ओग संज्ञा में पड़ा है और कहता है कि हमको केवल ज्ञान वर्तता है, वो तो भ्रांति है, ऐसी बात है।
तो कहने की बोलते हैं मंदिर जाते थे ना जाते थे ध्रुव को,
हाँ
वो बात है,
ध्रुव को तो ध्रुव रूप में ले लिया उन्होंने, और ध्रुव को प्रगट रूप में लिया तो उसके ज्ञान में प्रगट है तो कोई सवाल नहीं, लेकिन ओक संज्ञा में पड़ा है और स्वरूप को दिखे नहीं और मान लेवे कि हमको केवल ज्ञान हो गया, हम तो ध्रुव है, ऐसा चले नहीं।
हाँ,
भावना की बात सही भावना के रूप में आए तो कोई अपराध नहीं, और भावना तो होवे नहीं और रटन करे तोता की तरह, पोपट तोता की तरह, तो वो तो मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो जाएगा।
भावना की करना
है,
भावना करना है,
भावना तो स्वरूप को ज्ञान में लेकर के भावना उत्पन्न हो जाती है, मैं ऐसा हूँ ऐसे भावना उत्पन्न हो जाती है, तो शक्ति को व्यक्त रूप में भाने लगता है, तो शक्ति की व्यक्ति होने का परिणमन होने का ये कार्य पद्धति है, विधि है, ये विधि का विषय है। शक्ति को कैसे प्रकट करें कि शक्ति को ज्ञान में दिखे, तो शक्ति कैसी है कि शक्ति जैसी है वैसा ही परिणमन हो गई, इसका ऐसा इनका स्वरूप है, ऐसा स्वरूप दिखने में आता है तो उसका प्रकट परिणमन भाते भाते हो जाता है, और परिणमन हुआ तो वृद्धिगत भी हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, एक विधि है, ये सूक्ष्म विषय है थोड़ा। क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञान आदि रूप होने की शक्ति है, ऐसा स्वरूप है, शक्ति रूप ऐसा स्वरूप है, वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है, शक्ति का परिणमन शुद्ध परिणमन प्रकट होवे तो जितना होवे उतना कहो पर्याय अपेक्षा से, लेकिन बिल्कुल नहीं होवे और मान लेवे कि हमको केवल ज्ञान है तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। कैसा? वो सूर्य का दृष्टांत की तरह है कि सूर्य तो प्रकट प्रकाशित है, बादल बीच में आ गए है इसलिए हमको प्रकाश नहीं इधर मिल रहा है, ऐसे कर्म के आवरण के पीछे तो केवल ज्ञान अवस्था प्रकट है, लेकिन बीच में कर्म का आवरण पटल है, कर्म पटल, इसलिए उधर अवस्था में केवल ज्ञान नहीं आ रहा है, वो तो बादल रोकता है उसको, तो ऐसी बात है
नहीं।
पीताम्बर में वो मान्यता है, केवल ज्ञान की सत्ता मानते हैं, शक्ति नहीं मानते हैं, केवल ज्ञान की सत्ता मानते हैं, शक्ति नहीं मानते हैं, केवल ज्ञान की सत्ता है, लेकिन सत्ता शक्ति रूप है कि व्यक्ति रूप है वो बात का खुलासा वहां नहीं, या तो मान लेते कि नहीं व्यक्ति रूप है, ऐसा नहीं है, वो ब्रह्म है। कोई ऐसा मानता है, नाम नहीं लिया इधर, कि आत्मा के, क्योंकि ये प्रकरण चल गया छठा प्रकरण में चल गया, इसलिए कोई ऐसा मानते हैं, या तो दिगंबर जैन हो गए तो भी कोई ऐसा मानता है आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान है प्रकट, ऊपर आवरण होने से, हाँ सत्ता का शक्ति का खुलासा किया है, हाँ वो किया है कि वो शक्ति रूप है, सत्ता रूप नहीं है, ऐसा कहा है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है, ऐसा केवल ज्ञान प्रकट है नहीं, कर्म के पर्दे के पीछे कोई केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, यदि केवल ज्ञान हो तो वज्रपटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। कर्मपटल की क्या देन है? वज्रपटल होवे तो भी केवल ज्ञान को रोक सकता नहीं है। देखो कि संसारी जीव को कर्म का आवरण है और दूसरे केवल ज्ञानी को तो प्रकट केवल ज्ञान है। तो संसारी जीव की आत्मा को देखने के लिए उसके आगे जो कर्म पटल है वो केवल ज्ञान को रोक सकता है? अनंत कारमण वर्गणाएं हो केवल ज्ञान को रोकती है क्या? केवल कर्म पटल क्या वज्र पटल हो तो भी रोक सकता है। इसी का नाम केवल ज्ञान है। तुम क्या बताते हो सत्ता को? सत्ता होवे और कर्म पटल से रुक जाए ये बात हो सकती नहीं, नहीं। बहुत अच्छा दलील आर्ग्यूमेंट है, बराबर है। यदि केवल ज्ञान प्रकट हो तो वज्रपटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है, उसको रोक सकता नहीं है जानकारी को। कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? केवल ज्ञान हो तो कैसे बंद हो जाएगा कर्म आड़े आने से? ये रुक सकता नहीं। इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। कर्म आड़े आने से नहीं, कर्म का निमित्त है, द्रव्य कर्म का निमित्त है और भाव कर्म अपने परिणमन में है। यही सच्चा ज्ञान पर तो आवरण भाव का है, क्योंकि केवल ज्ञान भी भाव है, भाव पर भाव का आवरण है। द्रव्य का आवरण तो निमित्त रूप से बोलने में आता है, वास्तव में नहीं है। वो तो उपचार से कहा कर्म का आवरण तो अलग द्रव्य है। इसलिए और दूसरे सिद्धात्माओं के केवल ज्ञान को वो रोके कि नहीं रोके? और लोक में अरिहंत परमात्मा है, उनका केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है। वो अनंती का कारमण वर्गणा है, कोई केवल ज्ञान को रोक सकते नहीं है। इसलिए कर्म के निमित्त से अपने अपने हो, हरेक को अपना अपना जो कर्म संचित कर्म है उसके निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव है, वो आगम पद्धति से लिया है। निश्चय से तो अपना जो भाव है, विकारी भाव है, वही केवल ज्ञान को रोकता है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इससे पारिणामिक भाव, तो इसे पारिणामिक भाव कहते हैं। देखो यहाँ तो पर्याय में प्रकट हो तो क्षायिक भाव कहते हैं, नहीं प्रकट हो तो क्षोत्सम भाव कहते हैं ज्ञान को। केवल ज्ञान प्रकट होने से केवल ज्ञान को क्षायिक भाव कहते हैं और केवल ज्ञान नहीं पर्याय में प्रकट है तो क्षोत्सम भाव में ज्ञान है। अगर पर्याय में सदा केवल ज्ञान प्रकट हो तो उसको ही पारिणामिक भाव बोलना चाहिए, क्योंकि पारिणामिक भाव अनादि अनंत होता है। लेकिन पर्याय में तो पारिणामिक भाव होता ही नहीं, कभी पर्याय में पारिणामिक भाव होता नहीं है। इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो क्षायिक भाव है। केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है, केवल ज्ञान को पारिणामिक भाव नहीं कहते, पारिणामिक भाव को केवल ज्ञान या क्षायिक भाव नहीं कहते। देखो शक्ति रूप केवल ज्ञान है फिर भी पारिणामिक भाव से है। क्या शक्ति रूप केवल ज्ञान है वो क्षायिक भाव से नहीं है, पारिणामिक भाव से है, और पर्याय में जो उत्पन्न होगा वो क्षायिक भाव से होगा। पांच भाव को समझे तो कोई गड़बड़ है वे? परंतु यह तो क्षायिक भाव है। सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव तो पारिणामिक भाव है। देखो ये बड़े टाइटल में सर्व भेद जिसमें गर्भित है, पारिणामिक भाव में सर्व भेद आ जाता है। क्या जो त्रिकाली द्रव्य है पारिणामिक भाव, उसमें सर्वभेद गर्भित है, समाविष्ट है क्या? क्योंकि वो तो सर्व के ऊपर का है। जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया का नोट है, एक अखंड एक नोट है, उसमें 25 है कि नहीं है? 25 तो 4 दफे है, 1 दफे नहीं है। कितना? 25 तो 4 दफे है। ऐसे पारिणामिक भाव में श्रुत ज्ञान कितना है कि अनंत श्रुत ज्ञान से भी अधिक है वो, तो सर्वभेद उसमें गर्भित हो जाता है। मैंने सर्वभेद नीचे के हैं ऐसा लेना है। सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव मैंने सर्वोपरि भाव, सभी पर्यायिक भाव से भी सर्वोपरि भाव ऐसा लेना है। क्या? जो क्षायिक केवल ज्ञान के पर्याय है, इससे अनंत गुण समृद्ध है पारिणामिक भाव, इसलिए केवल ज्ञान भी इसमें गर्भित है। मति श्रुत अवधि तो गर्भित है, लेकिन केवल ज्ञान भी इसमें गर्भित है। सो पारिणामिक भाव है, इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञान आदि रूप व केवल ज्ञान आदि रूप है, सो ये पारिणामिक भाव नहीं है। लेकिन जीव की जो अवस्थाएं हैं मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पारिणामिक भाव नहीं है। पारिणामिक भाव में उत्पाद यही नहीं है, और मति श्रुत केवल में उत्पाद यही है, तो उनका स्वरूप ही अलग है। वो द्रव्य भाव रूप है, शक्ति भाव रूप है, और ये पर्याय भाव रूप है, व्यक्त व्यक्त भाव रूप है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना, इसलिए केवल ज्ञान की सत्ता मानना नहीं, ऐसा कहते हैं। सद्भाव मैंने सत्ता रूप सद्भाव मानना नहीं, शक्ति रूप मानना, एक मान्यता को स्पष्टीकरण दे दिया सत्ता वाले का। अब दूसरा कहते हैं, वो दृष्टांत सूर्य का लिया है, इधर देखो। तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है, कहते हैं भाई सारे शास्त्र में सूर्य का दृष्टांत आता है, पारिणामिक भाव को समझाने के लिए सूर्य का दृष्टांत आता है, अग्नि का दृष्टांत आता है, दर्पण का दृष्टांत आता है, क्या समुद्र का दृष्टांत आता है, और ये स्फटिक मणि का दृष्टांत आता है, कितने दृष्टांत लिए हैं पंचाध्यायी में, 26 दृष्टांत लिए हैं। तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका उतना ही भाव लेना, यानी इतना ही पॉइंट लेना, उतना ही अंश लेना, कि जैसे मेघपटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। तो ये तो एक कर्म का आवरण दिखाने के लिए बात है। वास्तव में सूर्य प्रकट है वैसा केवल ज्ञान वहां अवस्था रूप प्रकट है, ऐसी बात नहीं है, ये भी स्पष्टीकरण दे दिया। किस अंश से वो दृष्टांत चला है शास्त्र में, सूर्य का दृष्टांत किस अंश से चला है, कि वो प्रकाश मेघ पटल बादल का पटल आड़े आता है उतना दिखाने के लिए वहां कर्म पटल की बात लिया है, वास्तव में सूर्य प्रकट है ऐसी बात वहां नहीं लेना है। तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में पारिणामिक भाव में केवल ज्ञान रहता है, ऐसा लेना नहीं, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलते नहीं है। दृष्टांत सर्व प्रकार से मिले तो दूसरा दृष्टांत देने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन यहाँ तो 25 दृष्टांत और देते हैं क्योंकि सबका अंश लिया है। इस दृष्टांत पे इस अंश से बात लेना है, इस दृष्टांत पे इस अंश से बात लेना है, ऐसा। जैसे उद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पितादी अवस्था है, तो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञानादि रूप अवस्थाएं हैं, तो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। एक साथ दो अवस्था रह सकती नहीं, उसका तो दूसरा भी ले सकते हैं कि पुद्गल में वर्ण गुण है, उसकी अवस्था कोई न कोई वर्ण रूप होती है, पीली हो, नीली हो, हरित हो, लाल हो, सफेद हो, लेकिन वर्ण गुण का कौन सा वर्ण है बताइए। वर्ण गुण की अवस्था कोई न कोई वर्ण रूप होती है, लेकिन वर्ण गुण का वर्ण कैसा? अगर वर्ण गुण का वर्ण सफेद होता तो उसकी हर अवस्था सफेद हो जाती, अगर वर्ण गुण का वर्ण पीला होता तो उसकी सब अवस्थाएं, इसका कोई वर्ण नहीं, क्योंकि वर्ण होना वो अवस्था का धर्म है, प्रकट वर्ण होना वो अवस्था का धर्म है, गुण का
नहीं,
गुण अवर्ण वाला है। वर्ण गुण का वर्ण कैसा, इसका कोई वर्ण नहीं है। ऐसी बात, क्योंकि वो तो शक्ति रूप है, व्यक्ति रूप है ही नहीं। और उसकी कोई न कोई अवस्था जो होती है वो एक हो तो दूसरी, काली और सफेद साथ में नहीं रहती, पीली और लाल भी साथ में नहीं रहती। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञान हो तो केवल ज्ञान नहीं हो, केवल ज्ञान हो तो मति ज्ञान नहीं होती, क्योंकि एक अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही होता है। तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? नया प्रश्न उठाया। आवरण तो वस्तु को ढांक देने से होता है, आच्छादित करने से होता है, तो केवल ज्ञान आवरण का मतलब ये हुआ कि केवल ज्ञान तो प्रकट है लेकिन कर्म पटल उसको ढांक देता है, ऐसा हम समझते हैं कि नहीं? ऐसा भी समझने का नहीं है। आवरण में से कल्पना दूसरी हो जाती है, आवरण लगा दिया, पर्दा, वस्तु तो प्रकट है लेकिन पर्दा लगा दिया आवरण का, नहीं ऐसी बात नहीं है। शक्ति व्यक्ति की बात अलग अलग है। उत्तर के यहाँ शक्ति है, देखो अब कहा कि यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। कैसे कहा? शक्ति को व्यक्त होने में अवरोध आता है, उसी का नाम आवरण दिया है, लेकिन व्यक्ति है और पर्दा रखा है ऐसी बात नहीं है, दो बात अलग अलग हो जाती है। आवरण कहने की उतनी अपेक्षा है कि शक्ति को व्यक्त नहीं होने देती है। नहीं, शक्ति को प्रकट नहीं होने देता, उसी का नाम आवरण बोला है, नहीं थवा दे तो। नहीं, वो तो निमित्त से कहा, अपना भाव है ना, जैसे अपना अशांत भाव अपने शांत शक्ति को शांत भाव परिणम नहीं देता, परिणम नहीं देता। जैसे हमारे ज्ञान में केवल ज्ञान प्रकट होने का, हमारे में शक्ति है आत्मा में, तो केवल ज्ञान कब प्रकट होता है कि हमारे ज्ञान के पर्याय हमारे न्यायिक स्वभाव में एकाग्र हो गए तब तब केवल ज्ञान हो सकता। अच्छा, अब हमारा ज्ञान न्यायिक में एकाग्र नहीं हो करके ज्ञेय में एकाग्र होता है, तो वो जो ज्ञेय में एकाग्र होता है ऐसा ज्ञान है, उस वो केवल ज्ञान की शक्ति को पैदा होने देता नहीं है, उधर जाता है। जैसे ये आंगली इधर रोग से हो गई, रोग हो गया तो ऐसा हो गई, अब ये सीधी नहीं होने देता, रोग आंगली उंगली को सीधी होने देता नहीं है, शक्ति तो है लेकिन रोग आ गया। ऐसा परद्रव्य में एकाग्र होने का रोग है, उस शक्ति को व्यक्त होने देता नहीं है। और रोग का निमित्त क्या है, तो कर्म का उदय ऐसा लिया है, ऐसा कर्म का सूक्ष्म। हाँ, वो पारिणामिक भाव की अपेक्षा से है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, वो पारिणामिक भाव मूल स्वरूप की अपेक्षा से है, प्रगट स्वरूप की अपेक्षा से
नहीं
है। हाँ, गौतम स्वामी, हाँ गौतम स्वामी को आज के ज्ञान हुआ था, 24 घंटे के बाद हुआ था।
अच्छा,
शाम को गौतम स्वामी भगवान को हुआ, ठीक है। हाँ तो एकम है भैया, आज तो बीच है, आज बीच है, एकम नहीं। एक एक ही दिन में दो हुआ है, महावीर स्वामी भगवान को सिद्धपद हुआ और केवल गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, वियोग हो गया ना भगवान का, तो वियोग को खेद में नहीं परिणाम आते हुए वो अंदर में चले गया। क्या हुआ, भगवान का वियोग हुआ तो उनको तो परम प्रिय थे, गणधर थे इसलिए, लेकिन वो बाहर में खेद नहीं किया, बाहर में रोने लगे वो बात सही नहीं है, वो सितंबर में आता है कि रोने लग गए, ऐसा नहीं है, वो अंतर में उतर गया, वैराग इतना हुआ कि अरे संसार, तीर्थंकर का वियोग भी हमें हुआ, वो संयोग हुआ, वो भी वियोग हो गया, ऐसा हो गया क्या, छोड़ो अब किसको देखना है, अब कहीं बाहर देखना नहीं है, हमारे नायक परमात्मा को दिखाया है भगवान ने, हम उसमें समा जाते हैं, समा गया उसमें, केवल ज्ञान प्रकट। शाम तक तो केवल ज्ञान ले लिया, शाम तक तो है, है? नहीं कोई किसी शिष्य की चिंता नहीं की, गुरुदेव ने भी हमारी चिंता नहीं किया, किया कि नहीं किया, लोग पूछते हैं कि गुरुदेव क्यों नहीं आते हैं, ये लोग गड़बड़ करते हैं तो गुरुदेव क्यों नहीं आते, उसको ठपकारने के लिए कि गुरुदेव चिंता करते हैं नहीं है, ये तो वितराग मार्ग है। हम हमारे लिए सब करते हैं, किसी के लिए हम कुछ करते हैं नहीं है, ऐसी बात है। वो गद्दी पर किसको बिठाया नहीं कि हमारी गद्दी पर इसको बैठना है, ऐसा लिया नहीं, क्योंकि वो तो बोले कि जो योग्य होगा वो इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार करेगा, अयोग्य होगा तो ऐसा करेगा, योग्य होगा वो योग्य करेगा, अयोग्य होगा वो योग्य करेगा, मैं क्या किसको बोलूं, मुझे क्या करना है, मेरे को मेरा काम करना है, ऐसी बात है। हाँ ऐसा ही करे, प्रयोग तो ऐसा ही किया जाता है, सही पर सम्यक प्रयोग तो ऐसा ही होता है। ये उत्तर का बात लिया है, जरा विस्तार से लेंगे।
तो